शिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा,
शांति। ब्राह्मण जन्म महान श्रेष्ठ पवित्र जन्म परमात्मा पिता से वरदान लेने का, परमात्मा पिता से मंगल मिलन मनाने की जन्म है ये, कदमों में पदम कमाई जमा करने की जन्म, पुण्य कमाने का जन्म, दुआएं कमाने का जन्म। 21 जन्म तो क्या, सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने का जन्म है ये। इसी जन्म में बाप दादा को अपने जीवन साथी बना के, अपने साथी बना के सदा उनके साथ रह सकते हैं और सदा अपने साथ उनको रख सकते हैं और उनके साथ हम रह सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय में स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को वरदानों से हमें पालते हैं, वरदानों से हमें चलाते हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसे महान पवित्र श्रेष्ठ समय में अगर हम उस परमात्मा पिता के बताए गए मार्ग पे नहीं चलते हैं, उनके वरदान को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं या उनसे मिले हुए वरदान को सही ढंग से उपयोग में नहीं लाते हैं, प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो हमें फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। जितना प्राप्ति होना चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं होती है। तो आज की जो चर्चा है इसी के आधारित है। आज की चर्चा में प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में 113 नंबर प्रश्न है, जो 24/2/84 में बाबा जब आए थे उस समय का प्रश्न है। ये प्रश्न है, ब्लेसिंग्स जो बाप दादा द्वारा मिलता है उसका गलत प्रयोग क्या है। बाप दादा के द्वारा जो हम बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलते हैं उनका गलत प्रयोग क्या है। बाबा ने उत्तर में बताया है कि कभी कभी बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य या अन्य कोई प्रकार के टाइटल्स देते हैं, तो उस टाइटल को मिसयूज कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि मैं तो ऐसा बन ही गया हूं, मैं हूं ही ऐसा, ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं प्रति व सेवा प्रति लगाना, यह है सही रीति यूज करना। अगर अलबेले बन जाता है यह है मिसयूज करना, अर्थात गलत प्रयोग करना। तो बाबा हमें वरदान देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, कोई विशेष टाइटल देते हैं हमें ही आगे बढ़ाने के लिए, हमारे ही भाग्य को ऊंचा उठाने के लिए। अगर उसको अगर अपना समझ लिया तो हमें जो आगे वरदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और हमें जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। उससे पहले, चर्चा शुरू से पहले जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे एक बात याद आई थी, रामायण के एक चौपाई बहुत अच्छी है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो रचित किया है रामचरितमानस रामायण, उसमें बड़े भाग्य से बड़े भाग्य से मानुष तन पावा। रामायण में लिखा है कि 84 लाख योनि में एक योनि मनुष्य का होता है, और ये बहुत भाग्य से, बहुत सौभाग्य से, बहुत पुण्य प्रताप के बाद में, बहुत तपस्या के बाद में मनुष्य तन प्राप्त होता है। उसमें लिखा है सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नगावा, ऐसा श्रेष्ठ जीवन है वो। उस श्रेष्ठ जीवन का गायन ग्रंथ में है, शास्त्र में है, और उसकी मानव तन जो प्राप्त है उस तन की महिमा देवताएं लोग भी करते हैं, क्योंकि इसी जन्म में कल्याण का कार्य, पुण्य का कार्य, सेवा का कार्य, भगवान को भक्ति करने का कार्य कर सकते हैं। इस मानव तन में रह के, देवता तन में रह के भक्ति नहीं कर सकते हैं, कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं, ये मानव तन में ही कर सकते, उसमें बताया है। और साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पायन जो परलोक सिधारा। ये जो शरीर मिला है, ये जो मनुष्य योनि मिला है, ये मनुष्य योनि के द्वारा ही साधना कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, महान व्यक्ति बन सकते हैं। अगर ऐसे श्रेष्ठ समय में ऐसे शरीर मिलते हुए, ये साधन मिलते हुए साधना के लिए, फिर भी अगर अपने परलोक को नहीं सुधारा, अपने भविष्य के जीवन को नहीं सुधारा, तो आगे क्या होता है वो देखिए। सो परत दुख पाए, सिर धुनी धुनी पछताए। वो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, दुख पाता है, सुख कभी नहीं पाता, सिर पटक पटक के पश्चाताप करते हैं। काल कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जब कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए, उस समय कर्म श्रेष्ठ नहीं किया, मिथ्या झूठ मूठ का भगवान को दोष लगाता है कि भगवान ने हमारे नसीब में ऐसे ही लिखा था, भगवान ने तो उसमें लिखा है, बताया है कि भगवान ने तो आपको मनुष्य तन दिया था पुण्य कर्म करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का, कल्याण का काम करने का, भलाई का काम करने का, भक्ति करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, लेकिन तुमने नहीं किया, और दोष भगवान को लगाते हैं। और वही चौपाई श्रीमद् भागवत गीता शिव भवानुवाच में भी है, वो चौपाई हम अभी सुनेंगे। बड़े भाग्य से ब्राह्मण जन्म पावा, सुर दुर्लभ संत सद ग्रंथ नगावा। ब्राह्मण जन्म जो है, मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं लेते, मनुष्य आत्मा है सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। उस 84 जन्म में ये जो ब्राह्मण जन्म है सबसे श्रेष्ठ जन्म है, सबसे महान जन्म है, क्योंकि इसी जन्म में हम परमात्मा पिता के साथ रह के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे जीवन बना सकते हैं, इस दुख की पहाड़ को, छप्पड़ को हम उठा सकते हैं। जीवन नैया अपनी पार लगाने के साथ साथ दूसरों की जीवन नैया को भी हम पार लगा सकते हैं, भगवान के हाथ और साथ रख के चल सकते हैं, दूसरे जन्म में नहीं हो सकता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नगावा, इसकी महिमा, इसकी गायन, इनका पूजन, इस जीवन के लिए ललायत देवताएं भी है, प्रकृति को भी, ये ब्राह्मण जन्म, हम बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं, धन्यवाद देते हैं, बाबा भी हम पे नौछावर हो जाते हैं ब्राह्मण जन्म में ही, बाकी 83 जन्म किसी में भी नहीं। और साधन धाम, साधन धाम जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति द्वारा ये साधन मिला है, ये शरीर मिला है हमें, उस धाम को प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्ति के धाम को प्राप्त करने के लिए साधन मिला है हमें। कौन सा साधन? ब्राह्मण जन्म का शरीर मिला है हमें। पायन जो परलोक सिधारा, ऐसे समय में ऐसा श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करके भी यदि ब्राह्मण अपने परलोक को नहीं सिधारा, अपने भाग्य को श्रेष्ठ नहीं किया, ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किया, पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं किया, तो क्या होगा? सो परत दुख पाए, क्या होगा? वो दुख को प्राप्त करेगा, अंत में सिर पटक पटक के पश्चाताप करेगा, सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ब्राह्मण बनने के बाद में, भगवान के पालना में पलने के बाद में, भगवान शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाने का वादा किया है, जीवन साथी बन के साथ रह रहे, फिर भी मिथ्या भगवान को दोष लगाते हैं, ड्रामा को दोष लगाते हैं, अपने भाग्य को दोष लगाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय के अगर हम, ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अगर हमने ध्यान से नहीं देखा, जीवन ठीक से नहीं जिया, तो भगवान को, ड्रामा को, अपने भाग्य को दोष दे के कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी हम आते हैं आज की चर्चा पे। बाबा ने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सर्विसेबल और अनन्य बच्चे, कई बार बाबा बच्चों को कहते हैं, तो अभी हम देखेंगे सर्विसेबल और अनन्य बच्चों की जो विशेषताएं हैं, वो तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएंगी, उसका कुछ देखेंगे उनके अंदर में क्या विशेषताएं या गुण होनी चाहिए। जो सर्विसेबल अनन्य बच्चे हैं, उनका अमृत वेला पावरफुल होगा, एक्यूरेट होगा, नियमित होगा। अमृत वेला अमृत पान करने की वेला है। अमृत वेला स्वयं बाप दादा अमृत की बरसात करते हैं। अमृत वेला हमारी अवस्था को मजबूत करने की वेला है। अमृत वेला सारे दिन के लिए स्टॉक जमा करने की वेला है। सर्विसेबल बच्चे बाबा के जो होते हैं वो बिजी तो रहते ही हैं, लेकिन बिजी होते हुए भी अमृत वेला उनका मिस नहीं होगा, पावरफुल होगा, एक्यूरेट होगा। दूसरा है, उनका क्लास नियमित रूप से, क्लास में नियमित रूप से समय पे जाएंगे, और क्लास में जो बाबा वाणी चलाते हैं, वो बाबा उस वाणी को स्वरूप बन के सुनेंगे। ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए क्लास में जाएंगे। बाबा को, श्री बाबा को वाणी चलाने में कितना मजा आता है। शाम को 7 बजे, सुबह 10 बजे तक वाणी चलाते रहते, कई बार चलाए हैं। और ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा प्यार किसे था? मुरली से था। वैसे सर्विसेबल बच्चों को भी मुरली से उतना ही प्यार होगा जितना बाबा को प्यार था। जब भी बाबा सकार में बाबा थे और बाबा से बच्चों मिलने आते थे, तो पहले बाबा कहते थे, बच्चे आज की मुरली सुना? तो बाबा कहते थे, नहीं बाबा, अभी तो हम आए हैं और स्नान करके आपसे मिलने आए हैं। बाबा कहते बच्चे पहले मुरली सुनो। कितना कदर था बाबा को मुरली से, ऐसे सर्विसेबल बच्चों को भी मुरली का कदर रहता है। अगर हमें सर्विसेबल बनना है, अनन्य बच्चा बनना है, तो अन्य जो है उनसे हमें विशेष बनना होगा। और मुरली को स्वरूप बन के सुनना होगा। उनका दिनचर्या एक्यूरेट होगा। ऐसा नहीं कि खाने के समय सोना और सोने के समय सेवा करना, ऐसा नहीं होगा उनका। जिस समय जो करना है उसी समय वो करेंगे, जितना समय करना है उतना ही समय करेंगे। उनका दिनचर्या पूरा एक्यूरेट होगा। उनके जीवन में, सर्विसेबल और अनन्य बच्चों के जीवन में सच्चाई और सफाई होगी। उनका कथनी और करनी समान होगा। कहा जाता है जहां सफाई है वहां देवताओं की वास होती है। सच्चाई अर्थात अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, अंदर और बाहर एक होना चाहिए। और सच्चाई का अर्थ अंदर बाहर एक अर्थात कोई गलत को ही अंदर रखना और गलत को ही बाहर निकालना वो नहीं। सत्य पिता परमात्मा जो बताता है वो अंदर रखना और उसी को बाहर निकालना, ये सच्चाई है। और वो जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज हमारे बाबा के यज्ञ की इतनी विस्तार होने का यही एक विशेषता है। जो भी बाबा के बच्चे निमित्त बने हैं, जो भी बड़े हैं हमारे, उनके अंदर में सच्चाई और सफाई थी। उनका सोचना बोलना करना समान था, इसीलिए उनकी प्रमाण है कि ये यज्ञ इतनी बड़ी विस्तार को पाया है। और इसी कारण से आज हमारे बड़ों को लोग दर्शन करने के लिए चाहते हैं, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए उनसे दृष्टि लेने के लिए चाहते हैं। अगर हमें सर्वेसेबल अनन्य बच्चे बनना है तो ये गुण को हमें धारण करना होगा। वो आज्ञाकारी होंगे, हाजी का पाठ बजाएंगे, जो भी सेवा मिले, जब भी सेवा मिले, जहां जाने के लिए बोले, जैसे करने के लिए बोले निमित्तात्मा, आज्ञाकारी बन के करेंगे, हाजी का पाठ बजाएंगे। सेवा दिल से करेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे, पूरा तन मन से, बुद्धि से, पूरा विवेक से, जागरूक होके सेवा करेंगे। निमित्त आत्मा ने बोला ये करो, बोला क्यों करूंगा, अभी जरूरत नहीं है, अभी ऐसे, ये सब नहीं, पूरा दिल से करेंगे सेवा, आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करेंगे। हर्षित मुख निर्मांचित होंगे वो, उनका चेहरा कैसा होगा, हर्षित मुख होगा, खुश रहेगा। ऐसा नहीं कि आपकी चेहरा को देख के दूसरा उदास हो जाए, निर्मांचित होंगे वो। कम खर्च वाला नशीन, काम ये गुण, ये विशेषताएं और दादी हरेक मधुबन निवासी दादी के अंदर थी। और दादी हरेक मधुबन निवासी को ध्यान खिंचवाता था, खिंचवाती थी, जो भी काम करते हो, जो भी सेवा करते हो, उसमें खर्च कम हो लेकिन सेवा अच्छे से अच्छा हो। हमें भी, हमको याद है कई साल पहले चंद्रू भाई जी जो यज्ञ की खरीदारी करते थे, मैं समझता तो बहुत यहां नहीं भी पहचानते और बहुत पहचानते भी होंगे, बाबा के यज्ञ की बचत के लिए कितना मेहनत करते थे वो, पैदल कितना दूर जाते थे, कई दुकान में जाके खरीदारी करते, कई दुकान में जाके ट्राई करते थे, रिक्शा से जाएंगे तो 10 रुपया खर्च हो जाएगा इसलिए पैदल जाते थे वो, केला खा के रहते थे और इतना बचत करते थे और दादी को सुनाते थे, दादी कितना खुश होती थी उनसे। बहुत पुराने भाई थे तो कम खर्च और कार्य अच्छे से अच्छा हो, ऐसा उनके अंदर विशेषताएं गुण होगी। वो निर्भय होंगे, किसी से डरने वाले नहीं होंगे, निर्भय होंगे, निर्भयर होंगे, वो किसी के साथ बैर नहीं होगा उनका, हिम्मतवान होंगे, वो एकदम वो नहीं दिल शिकस्त वाला नहीं, एकदम उमंग उत्साह उनके अंदर भरा हुआ होगा, पूरा जोश, हिम्मतवान। वो जब भी सेवा करेंगे बाबा को साथ रख के सेवा करेंगे या बाबा के साथ होके सेवा करेंगे, एक है साथ रहना, एक है साथ होना। ऐसा नहीं कि कर किसका सेवा रहे और उनको ही हम भूल गए, कर किसके लिए और उनको ही भूल गए, ऐसा उनके अंदर गुण नहीं होगा। सदा बाबा को साथ रख के या साथ रह के सेवा करेंगे, उनकी याद में सेवा करेंगे, उनसे भी सेवा लेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे, और आप समान बना के जिम्मेदारी दूसरों को भी देंगे। ऐसे नहीं कि सब कुछ खुद ही पकड़ के रखेंगे, उलझे रहेंगे उसमें, जो कहीं बाहर निकलने का टाइम ही ना मिले। भला करो और आगे बढ़ो, ऐसे उनके अंदर गुण होगा। आज हम देखते हैं, एक हमारी बाबा ने एक दीदी को एक जगह पे भेजा, और एक दीदी ने कितना सेंटर, कितनी गीता पाठशाला, कितनी रिट्रीट सेंटर संभाल रही है। अगर वो एक ही स्थान को पकड़ के रखता, अगर एक ही स्थान को पकड़ के रखती, तो इतना सेवा को आगे नहीं बढ़ा पाते, और इतनी बाबा की सेवा विस्तार को नहीं पाता, और इतने लोगों की दुआएं जमा नहीं कर पाती। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें दुआएं जमा करनी है, हमें पुण्य कमाई जमा करना है, तो हमें बैंक बैलेंस करना होगा, जो थीरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आती रहेंगी। बैंक बैलेंस करना अर्थात आप समान औरों को बनाना और जिम्मेवारी देके अपने को आगे बढ़ाना। सर्विसेबल और अनन्य बच्चे सूक्ष्म और स्थूल श्रीमत का पालन करेंगे, श्रीमत का अवहेलना नहीं करेंगे, श्रीमत को सिर माथे रखेंगे, एक होता है बाहर की श्रीमत दूसरों को दिखाने वाला, एक होता है अंदर की श्रीमत। तो अंदर से तो बहुत, बाहर से तो बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं, लेकिन अंदर से किसी को पता ही नहीं चलता हम क्या करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर गुण नहीं होना चाहिए। और कौन सी विशेषता होगी सर्वसेवी अनन्य बच्चों की? फ्लेक्सिबल होंगे, अथक होंगे, ऑलराउंड और एवरेडी होंगे। जो भी सेवा मिले, जिस भी डिपार्टमेंट का मिले, ऑलराउंड सब प्रकार की सेवा की उनके अंदर नॉलेज होगा, और सदा एवरेडी होंगे। हमारी दीदिया कहती है कि हमारे बैग खूंटी पे लटका हुआ रहता है, जब 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 बुलावा आए और बस बैग उठाया और चल पड़े, ऐसे एवरेडी जब भी बुलावा आवे और सेवा के लिए तैयार, ऐसे उनके अंदर में विशेषताएं और गुण होंगी। वैसे है तो बहुत सारे, लेकिन अभी दूसरी की ओर चलते हैं। और आज की जो टॉपिक है, जो गलत प्रयोग, वरदानों का गलत प्रयोग का अर्थ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वरदानों का गलत प्रयोग क्या है बताइए? हाँ, ये गलत प्रयोग। और बाबा के हल्के रहो, अर्थात कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाबा ने जो वरदान दिया है, बाबा से जो कुछ शक्ति मिली है, बाबा से जो कुछ विशेष कुछ मिला है, उसको बार बार करना, ये वर्णन करना, ये भी गलत प्रयोग है। मियाँ मिठू बनना, ये भी गलत प्रयोग है। तो इसमें जो हमने पॉइंट निकाला है, पहला पॉइंट है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जिद पे अड़े रहना। श्रीमत कुछ और कहता है, निमित्त आत्माओं की आज्ञा कुछ और है, यज्ञ का कल्याण कुछ और में होना है, लेकिन अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी फायदा के लिए उस बात पे टिके रहना, भले यज्ञ का कुछ भी हो जाए, हिले न डोले। कल परसों की बाबा ने वाणी में, कुछ दिन पहले की बाबा ने वाणी में बताया था ना कि पत्थर पे कितना भी पानी डालो तो क्या होगा, वो पत्थर पिघलता नहीं है। ऐसे ही अपने ही जिद पे अड़के रहना, अरे ये जीवन जो आपको मिला है भगवान के वरदान में मिला है, रहने का चांस मिला है भगवान के वरदान में मिला है, अगर प्रभु कृपा ना हो तो यहाँ टिक ना पाए, फिर भी अपने बाद जिद पे अड़े रहते हैं। तो पहला है, अपने जिद को सिद्ध करने के लिए अपनी बातों में अड़े रहना। बाबा ने जो दिनचर्या बनाई है, दूसरा पॉइंट, बाबा ने जो दिनचर्या बनाया है, हमें कितना अच्छा बना के दिया है, अमृत वेला क्या करना है, अमृत वेला के बाद क्या करना है, मुरली किस प्रकार से सुनना है, नाश्ता कैसे करना है, कर्मयोग कैसे करना है, विश्राम कैसे करना है, रात्रि क्लास कैसे करना है, हर चीज बना के दिया है, लेकिन उनका दिनचर्या ही ठीक नहीं रहता है। बाबा बताएंगे कुछ तरह चलेंगे, कुछ अपने हिसाब से। अपनी दिनचर्या को ठीक से नहीं निभाना, ये भी क्या है, भगवान के वरदान का गलत प्रयोग है। बाबा ने जो हमें चार सब्जेक्ट दिया है इस पढ़ाई के लिए, ज्ञान योग सेवा धारणा, उस ज्ञान योग सेवा धारणा में इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। बाबा तो वही बातें रोज बताए, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तुम्हें पावन बनना है, तुम्हें सतयुग में जाना है, वो सुना हुआ तो है, क्यों सुनना, जा तो रहे नहीं अभी तक, आज तक तो कोई गया नहीं, ब्रह्मा बाबा भी बीच में लटके हुए हैं, इतने साल हो गए, अभी बाबा का भी आना बंद हो गया, कितना बार तो बाबा ने बोला विनाश होगा, लेकिन हुआ तो नहीं अभी तक। योग में भी इंटरेस्ट नहीं, अगर योग में जाएंगे भी तो भी भले हम बहुत पुराने समय से हैं, लेकिन योग के समय में हमारी मन तो भटकता है, लेकिन शरीर का एक वो जो है वो भी बदलता रहता है, धारणा भी उतनी श्रेष्ठ नहीं रहती है, और सेवा भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, ये भी क्या है, इतनी श्रेष्ठ ज्ञान को, इतने श्रेष्ठ योग को, इतनी श्रेष्ठ धारणाएं और इतनी ऊंची भाग्य बनाने वाले सेवा को अगर हम ढंग से नहीं करते हैं, जिस सेवा से कदमों में पदम जमाई कमा होती है, हमारी श्रेष्ठ भाग्य बनता है, हम दूसरों को कल्याण कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर पाते, ये क्या है, ये तो भगवान के वरदान का गलत ही तो प्रयोग है, और क्या है। बाबा ने एक दो दिन पहले की मुरली में बताया, मैं इसमें तो परसों की मुरली में था, बच्चे यहाँ पे भाई बहन के संबंध में भी नहीं, भाई भाई के संबंध में रहो, ब्राह्मण बनने के बाद में, संबंध पता होने के बाद में भी संबंध ठीक से नहीं निभाना, अपने से बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, अपने से साथ वालों के साथ कैसे चलना चाहिए, अपने से छोटों के साथ कैसे चलना चाहिए, बाहर वालों के साथ कैसे व्यवहार में आना चाहिए, इतनी ऊंची नॉलेज होने के बाद में, इतनी नॉलेज ज्ञान लेने के बाद में भी समझ नहीं है तो क्या है? और कई बार क्या होता है, बाबा ने जो हमें सेवा दिया है, बाबा ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी में मैंपन तो आना ही, उससे भी आगे की बात है। उस जिम्मेवारी को होते हुए अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए दूसरे का नाम लेके काम कराना। कई बार बड़ों के साथ हम रहते हैं और हमें कुछ चाहिए होता है और हमें नहीं मिल पाता है, हम बोल देते हैं कि बड़ों को चाहिए था इसलिए जरूरत है दीजिए, क्या आपको लिए, आपको इसीलिए वहां पे रखा था, हमें उसी के लिए यहां पे रखा था। अगर आपको जरूरत होगी, अगर हमें जरूरत है, बाबा देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, आज तक की अनुभव है। आगे का है शरीर का और सेवा का अभिमान। हम कई बार देखते हैं जब बाबा मिलन के लिए, चाहे ऐसे ही बाबा के घर में, जिनको आंख नहीं है वो बाबा का बच्चा है, जिनको हाथ ठीक से काम नहीं करते वो बाबा का बच्चा है, जिनको पैर ठीक से काम नहीं करते वो बाबा का बच्चा है, जो बोल नहीं पाते वो बाबा का बच्चा है, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां होगी आप सोच सकते हैं। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। अरे तो हमें भगवान ने दो आंख अच्छे दिए हैं, बोलने के लिए मुंह में आवाज दिया है, चलने के लिए पैर अच्छे दिए हैं, कर्म करने के लिए अच्छा कर्म किया है, और इस पे अभिमान किसने दिया है? ये वो प्रभु वरदान है, प्रभु कृपा है, प्रभु अनुकंपा है, इस पे अभिमान करना? देहिया का कोई ना ठिकाना मेरे भाई, बोले बोले ना बोले। अगर हम इस पे अभिमान करते हैं, इसका गलत प्रयोग करते हैं, ये प्रभु के अमानत में खयानत आना है। अपने ऊपर हंसी आनी चाहिए इस बात पे, अपनी सेवा का अभिमान। बाबा ने सेवा दिया है भाग्य बनाने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, सिस्टम को सहज करने के लिए दिया है, उस पर गुमानी चढ़ाने के लिए नहीं दिया है, अभिमान दिखाने के लिए नहीं दिया है। अगर मान लीजिए जीवन से बाबा को हटा दिया जाए, या तो हमारे जीवन से बाबा अगर निकल जाते हैं, वही सेवा आप कीजिए, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बाबा है इसीलिए छोटी सेवा करते हुए भी हमारा सिर ऊंचा है। आगे है धन का और यज्ञ के वस्तु का मिसयूज। या हम घर में है, या समर्पित है, या प्रवृत्ति में है, या नौकरी करते हैं, ये जो धन है किसका है? बाबा का है। अगर इसका गलत प्रयोग करते, जहां जरूरत नहीं वहां प्रयोग करते, फजूल का खर्च करते हैं, ये भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। यज्ञ के वस्तु को कदर करना नहीं करते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बाबा के यज्ञ में, चाहे आपके घर में जो भी वस्तु आते हैं, सभी के ऊपर में बाबा का अधिकार है, उसका गलत प्रयोग करना, जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रयोग करना, ये भी भगवान के वरदान का गलत प्रयोग है। आगे मोहम्मद रफी जी से किसी ने कहा कि अरे आपके बोल में तो खुदा बसता है। मोहम्मद रफी जी ने क्या कहा? मोहम्मद रफी जी ने कहा कि खुदा की कृपा है कि हमारे बोल को इतना मधुर बनाया है, जो हमारे बोल से लोगों को दिल हर्षाता है, खुश होता है कि खुदा की बास दिखाई देती है। और हम जो ज्ञान सुनाते हैं, हमारे ज्ञान सुनाने की जो टेक्निक है उस पे अगर हमें अभिमान आया, तो जिनको खुदा के बारे में पता नहीं वो ऐसे कहता है खुदा के लिए, और हम अपने ऊपर अभिमान करें जो खुदा ने हमें लायक बनाया है, तो हमारी क्या हाल होगी। ये जो गुण है, विशेषताएं हैं, ये बोलने की जो कला है, प्रभु कृपा है, प्रभु अनुकंपा है, प्रभु वरदान है। अपनी गुण और विशेषता को तो बता ही दिए, जो भी गुण और विशेषताएं हैं वो प्रभु कृपा के बिगैर कुछ भी नहीं है हमारे पास। अमृत बेला बाबा शक्ति भरने, अमृत पान कराने आते हैं और उससे हम फायदा नहीं लेते हैं, ये भी वरदान का गलत प्रयोग है। संगम के समय के लिए बाबा ने कहा है, संगम का समय सृष्टि चक्र का भोर है, अमृत वेला है, अमृत वेला के बाद सुनहरे सवेरा आने वाला है, उसकी आरंभ का समय है अमृत वेला, संगम युग। संगम युग के समय से फायदा न उठाना, ब्राह्मण जीवन से लाभ न उठाना, यह भी प्रभु वरदान के गलत प्रयोग है, ब्लेसिंग का गलत प्रयोग है। तो हमें कभी भी जो प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा जो वरदान मिली है, उस वरदान को हमें गलत प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है, आगे का है, तीसरी, ब्राह्मण अलबेला किस किस में होते हैं उसको हम देखेंगे। ब्राह्मण अलबेला योग में होते हैं, योग ठीक से नहीं करते हैं, समय पे नहीं जाते, वही तो योग है। क्या करना है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को ही तो याद करना, तो कहीं भी कर सकते हैं। बाबा ने जो नियम बनाया है कि संगठित योग का अपना महत्व है, अलग से योग करने का अपना महत्व है, चलते फिरते योग का अपना महत्व है, और सोने से पहले योग का और सो के उठने के पहले का योग का अपना महत्व है, तो उस पे ध्यान नहीं देना, अपनी सेवा में भी अलबेला हो जाते हैं। जितना ठीक से करना चाहिए, ठीक रीति चलना चाहिए, उतना ठीक रीति नहीं चलते हैं। ब्राह्मण अपनी दिनचर्या में अलबेला बन जाते हैं, मुरली सुनने सुनाने में भी अलबेला बन जाते हैं, खान पान में ज्यादा अलबेला बन जाते हैं, खाते समय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भूल जाते हैं, समय पर नहीं खाते हैं, या तो खाना जितना चाहिए उसे ज्यादा खा लेते हैं, और हमारे स्वास्थ्य को जो नुकसान नहीं करना चाहिए वो खाना चाहिए, तो जो स्वास्थ्य को नुकसान करता है वो खा लेते हैं। अपने जिम्मेवारी में ब्राह्मण अलबेले बन जाते हैं, कैसे जिम्मेवारी बहन करना चाहिए, बाबा ने आपको किस लिए रखा था, कर क्या रहे हैं, सोच के आए थे, अभी सोच क्या रहे हैं, उसमें अलबेला बन जाते हैं। संबंध में अलबेला बन जाना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए कैसे नहीं निभाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर भी अलबेला बन जाते ब्राह्मण। कई बार ये देखा गया है कि कोई तो फुल स्वास्थ्य की रक्षा में ही लगे रहते हैं, हॉस्पिटल का और डॉक्टर साहब का दर्शन करने और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहते हैं, कई तो जरूरत होने के बाद में भी ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें दोनों तरफ बैलेंस रखना है, जहां जरूरत है हमें ध्यान रखना है। कई बार बाहर जाने से थोड़ा अपनी जिम्मेवारी हल्का हो जाते हैं, और कैसे चलना चाहिए वो भूल जाते हैं और कुछ नए ही रूट पकड़ लेते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के समय जो बाबा बीच बीच में हमें ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, उसमें भी हम कई बार उतना ध्यान नहीं देते हैं, उसमें भी अलबेला बन जाते हैं। जब बाबा हमें बीच बीच में होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क करने में भी हम अलबेला बन जाते हैं, और ब्राह्मण जीवन में भी इस जीवन को ही हम हल्का ले लेते हैं, इसमें भी अलबेला बन जाते हैं। तो जो सर्वेश्वर बच्चों को गुण सुना हमने, वो गुण को अपने जीवन में धारण करना है। और जो हमने भगवान की वरदान या गलत प्रयोग सुना, वो गलत प्रयोग नहीं होने देना है। और ब्राह्मण जीवन में जो अलबेला किस किस में बनते, उस बात पे भी हमें अलबेला नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति।
मेरे परम पिता परमात्मा, जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।